हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। तो आज का जो श्लोक है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो आप हमारे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा। व्यक्तम विभो स्थूलमिदं शरीरम्, व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरम्। येनेन्द्रिय प्राण मनो गुणास्त्वम्, येनेन्द्रिय प्राण मनो गुणास्त्वम्। पुंसे स्थितो धामनि पारमेष्ठे, पुंसे स्थितो धामनि पारमेष्ठे, अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः, अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः। व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरम्, येनेन्द्रिय प्राण मनो गुणास्त्वम्, पुंसे स्थितो धामनि पारमेष्ठे, अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः। व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरम्, प्राण मनो गुणास्त्वम्, पुंसे स्थितो धामनि पारमेष्ठे, अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की। व्यक्तम प्रकट, विभो हे प्रभु, स्थूलम विराट अभिव्यक्ति, इदम यह, शरीरम बाह्य शरीर, येन जिससे, इंद्रिय इंद्रियां, प्राण प्राण, मनः मन, गुणान दिव्य गुण, त्वम तुम, भुंशे भोग करते हो, स्थितः स्थित, धामनी अपने धाम में, पारमेष्ठ्य परम, अव्यक्तः सामान्य ज्ञान से प्रकट ना होने वाला, आत्मा आत्मा, पुरुषः परम पुरुष, पुराण आदि सबसे प्राचीन। अनुवाद हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा। हे प्रभु, आप अपने धाम में निरंतर स्थित रहकर अपने विराट रूप को इस विराट जगत के भीतर से विस्तारित करते हैं, और इस तरह आप भौतिक जगत का स्वाद लेते प्रतीत होते हैं। आप ब्रह्म परमात्मा सबसे प्राचीन ईश्वर हैं। तात्पर्य कृपया सुनिएगा। कहा जाता है कि परम सत्य तीन रूपों में प्रकट होता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कृष्ण। यह विराट जगत भगवान का स्थूल शरीर है। वे भौतिक रसों का आस्वाद अपने अंशों अर्थात जीवों को जीवों का विस्तार करके करते हैं। ये जीव गुणात्मक रूप से उनसे अभिन्न है, किंतु भगवान वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जहाँ वे आध्यात्मिक रसों का भोग करते हैं। अतएव एक परम सत्य भगवान अपनी विराट अभिव्यक्ति द्वारा, अपने आध्यात्मिक भ्रम तेज द्वारा तथा परमेश्वर रूप में अपने साक्षात अस्तित्व द्वारा सर्वत्र व्याप्त हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत ही रोचक प्रसंग चल रहा है, अमर बनने की हिरण्यकश्यप की योजना। हम सोचेंगे रोचक किस प्रकार से, इसमें एक राक्षस अगर तपस्या कर रहा है तो इसमें रोचक वाली क्या बात है, इसमें कौन सी अच्छी बात है। परंतु जो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से तपस्या वरदान पाने के लिए किया, दरअसल हमारे जीवन का भी अधिकांश ऐसा ही कुछ केंद्र रहता है। हमारे जीवन की जो भी चीजें होती हैं, जो भी सेंटर्ड पॉइंट होता है, उसके पीछे ग्रीड होता है, लालच होता है, और हमारा सारे कार्य उस ग्रीड और लालच के कारण चल रहा होता है। और ये सारा ग्रीड, सारा लालच, ये तब आता है जब व्यक्ति अपने आप को शारीरिक रूप पे मानता है। किस प्रकार से इसमें हिरण्यकश्यप जो भगवान को भी जीतना चाहते थे, भगवान का वध करना चाहते थे, उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करने की कोशिश की। अब जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं उनसे, तो वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शारीरिक लेवल पे होता है वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी का भी गुणगान करने के लिए तैयार होता है ना? वो बहुत ही जगह पे कहावत है, जरूरत के लिए तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो उसी तरीके से जो भौतिक धरातल पर जो लोग हैं, मेटीरियल प्लेटफॉर्म पे जो हैं, वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए किसी का भी गुणगान कर सकते हैं, किसी को कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही केंद्र है कि उनकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, जो कि कभी पूरी नहीं होती। तो हिरण्यकश्यप भी, क्योंकि उसके अंदर एनवियस मेंटालिटी थी, ये ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ था, क्योंकि शारीरिक लेवल पे था, बॉडली प्लेटफॉर्म पे था और बदला लेना चाहता था विष्णु से। तो उसने अमर बनने की योजना बनाई और योजना को दिमाग में रखते हुए उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अब जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए हैं, तो जो स्तुतियां भगवान की होनी चाहिए, जो वेद स्तुतियां भगवान की कर रहे हैं, विष्णु की, कृष्ण की कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप माया द्वारा बिल्कुल जो ग्रसित हैं, यही स्तुतियां ब्रह्मा जी के लिए कर रहे हैं, जो स्तुतियां दरअसल कृष्ण के लिए होनी चाहिए। तो इसमें क्या बता रहे हैं वो, कि ब्रह्मा जी को वो परम बता रहे हैं, इंग्लिश में प्रॉपर लिखना चेंजलेस, कि आप में कोई परिवर्तन नहीं आता, हमेशा स्थित रहते हैं आप। शास्त्र में बताया गया, वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते, कि भगवान तीन रूपों से उनका साक्षात्कार किया जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान। तो जैसे यहां पर बता रहे हैं, वैसे तो ये हिरण्यकश्यप ने स्तुतियां ब्रह्मा जी के लिए किए हैं, परंतु हम ये जो हमारा जो आज का क्लास होगा, हम ब्रह्मा जी के लिए नहीं करेंगे, हम तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो यहां पर जो स्तुतियों में यहां पर जो बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान प्राचीन पुरुष हैं, सबसे पुराने व्यक्ति हैं, तो दरअसल इस पुराने व्यक्ति की बाहर समाज में बहुत गलत धारणाएं हैं। कुछ लोग पुराने व्यक्ति समझते हैं कि भगवान बहुत बूढ़े होंगे, है ना। हम लोग देखते हैं कृष्ण की फोटो या फिर कोई भगवान की फोटो बनाता है तो दाढ़ी के साथ बना देते हैं, क्योंकि बताया कि प्राचीन है, बहुत पुराने हैं, है ना। या फिर ब्रह्मा जी के भी आपने देखा होगा, चार सरों के साथ ब्रह्मा जी का, ये टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है ब्रह्मा जी की। तो दरअसल ब्रह्मा जी कोई बूढ़े व्यक्ति नहीं है, अपनी आयु के अनुसार वो भी युवा है। तो ये जो प्राचीन पुरुष जो बताया गया है यहां पर, तो भगवान कृष्ण में कभी भी कोई चेंज नहीं आता, भगवान हमेशा वैसे ही रहते हैं, नव यौवनम, हमेशा एवर यूथफुल, हमेशा भगवान युवा रहते हैं, कभी उनके अंदर कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। गौर गोविंद गणोदेश दीपिका में बता रहे हैं कि कृष्ण की जो आयु है वो 15 वर्ष 9 महीने और 7.5 दिन की रहती है हमेशा। जब कृष्ण के पर पौत्र भी थे तब भी कृष्ण की आयु थी 15 वर्ष 9 महीने और 7.5 दिन, और राधा रानी की आयु रहती है 14 वर्ष 2 महीने और 15 दिन, ये उनकी आयु रहती है। और ऐसा नहीं कि वो वृद्ध हो जाते हैं, क्योंकि दरअसल हम ये जो भौतिक संसार में रह रहे हैं, जी रहे हैं, हमारी एक कंसेप्शन है। हम लोगों ने देखा है आज तक हर कोई जन्म लेता है, जन्म लेते हुए रोता है, और जैसे ही जन्म लेता है धीरे धीरे करके बड़ा होता है, वृद्ध होता है, बीमारियां होती हैं और मर जाता है। तो ये जो सोच है हमारी, हम इस सोच से कभी कभी भगवान को देखने की कोशिश करते हैं, परंतु जो भगवान है दरअसल इस सोच से बिल्कुल परे हैं। भगवान को जो जन्म है वो दिव्य है। भगवान जब छोटे भी थे, जब बालक रूप में, तब भी उनकी शक्तियां उतनी ही थी, चेंजलेस, उसी में स्थित थे बिल्कुल। जो ऑल पावरफुल हैं उतने ही शक्तिशाली थे। जब भगवान केवल 6 महीने के थे तब उन्होंने पूतना का वध किया। पूतना इतनी बड़ी राक्षसी थी जो 8 किलोमीटर लंबी थी, 8 मील लंबी थी। उस राक्षसी का वध कृष्ण ने किया 6 महीने की आयु में केवल। तो कृष्ण की जो स्थिति है, जिसमें स्थित है कृष्ण, वो कभी बदलती नहीं है। हमेशा वो उतने ही शक्तिशाली रहते हैं, उतने ही सुंदर रहते हैं, उतना ही वैराग्य रहता है उनमें। ये कृष्ण की स्थिति हमेशा मेंटेन रहती है। क्योंकि हम भौतिक संसार में रह रहे हैं तो हम यही सोचते हैं कि ठीक है, कृष्ण बताया गया है कि कृष्ण जब वृंदावन में थे उन्होंने रासलीला की, तो कृष्ण बहुत युवा अवस्था में थे, है ना। तो फिर हम ये सोचते हैं कि जब मथुरा में कृष्ण गए होंगे तो थोड़ी उम्र बढ़ गई होगी, थोड़ा बूढ़े लगने लग गए होंगे, है ना। ऐसे आयु बढ़ती है तो एक सफेद बाल निकलना शुरू होता है, है ना, धीरे धीरे करके सारे बाल सफेद हो जाते हैं। तो हम जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, तो हम उसी तरीके से भगवान को भी तोलने की कोशिश करते हैं कि भगवान भी ऐसे ही हैं। भगवान युवा थे जब गोपियों के साथ थे, जब भगवान ने रास किया, धीरे धीरे करके भगवान ने विवाह किया, भगवान की 16108 रानियां थी, वो वृद्ध हो गए होंगे, बूढ़े हो गए होंगे, प्राचीन पुरुष हैं आखिर, है ना, सभी का जन्म उन्हीं से हुआ है। परंतु ये जो धारणा है बिल्कुल गलत है। भगवान हमेशा, कभी भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता। श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में 64 गुण बता रहे हैं कृष्ण के, उसमें से एक बता रहे हैं परिवर्तन रहित, कि कृष्ण परिवर्तन रहित हैं। कृष्ण कभी अपनी स्वरूप स्थिति नहीं बदलते, यहां तक कि जब वे इस जगत में प्रकट होते हैं उस समय भी नहीं। सामान्य जीवों की स्वाभाविक आध्यात्मिक स्थितियां प्रच्छन्न होती हैं, वे विभिन्न शरीरों में प्रकट होते हैं और देहात्म बुद्धि के अंतर्गत कर्म करते हैं, किंतु कृष्ण अपना शरीर नहीं बदलते, वे अपने शरीर से प्रकट होते हैं और इसलिए प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो उसी शरीर में, जो भगवान का चिन्मय शरीर है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, उसी में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान को कोई पंच महाभूत का बना शरीर नहीं लेना पड़ता जिसका नाश हो जाएगा, क्योंकि जो पंच महाभूत का शरीर है इसमें परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, और कृष्ण का जो शरीर है वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आगे बता रहे रूप गोस्वामी जी, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम नियंता का प्रमुख अधिकार यह है कि वे प्रकृति के गुणों से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। इसका प्रत्यक्ष दृष्टांत यह है कि जो भक्त भगवान के संरक्षण में होते हैं वे भी प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो रूप गोस्वामी जी यहाँ पर बहुत अच्छा बता रहे हैं कि किस प्रकार से, जैसे बताया गया है शास्त्रों में कि भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता, भगवान तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते, और उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, रूप गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार से भगवान के भक्त तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते, तो भगवान के बारे में क्या कहा जाएगा। जिनके भक्त ही तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते तो वो कैसे तीनों गुणों से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये जो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान की जो सुंदरता है, जैसे जो 64 गुण बताए गए हैं, जितने भी विष्णु तत्व हैं इनके अंदर मैक्सिमम 60 गुण रहते हैं, पर इसमें से 4 गुण मुख्यतः कृष्ण में रहते हैं। उसमें से एक है ब्यूटी, सुंदरता, कि कृष्ण जितना सुंदर कोई भी नहीं है, कोई विष्णु एक्सपेंशन, कोई राम, नरसिंह, हालांकि जितने भी अवतार हैं ये सब सर्व आकर्षक हैं। जब ये अवतार लेते हैं तो हर कोई आकर्षित होता है इनके प्रति, परंतु कृष्ण जितना सौंदर्य किसी में भी नहीं है। और वह कृष्ण का स्वरूप जब कृष्ण ब्रज में थे, और ब्रज में कृष्ण ने लीलाएं की अपनी, वह स्वरूप। तो जो कृष्ण है वो हमेशा एवर फ्रेश, हमेशा नव यौवन रहते हैं, उनके अंदर कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और जैसे कि कभी कभी जब भक्त लोग जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई आप एक छोटा सा मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, आप इसे पूरे दिन कैसे जप लेते हैं? और पूरे दिन नहीं, दिनों दिन, महीनों महीनों, सालों साल आप इसको कैसे जप लेते हैं? तो उसी प्रकार से जिस प्रकार कृष्ण हमेशा एवर फ्रेश होते हैं, एवर हमेशा सबसे अधिक सुंदर रहते हैं, उसी प्रकार से जो भगवान का नाम है, भगवान का धाम है, ये भी हमेशा एवर फ्रेश और एवर ब्यूटीफुल रहता है, हमेशा सुंदर, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए भक्त लोग जितना भी भगवान का नाम ले रहे कभी बोर नहीं होते, है ना? अगर ठीक से नहीं लेंगे तो सो जाते हैं, पर अगर ठीक से ध्यान पूर्वक भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे तो कभी बोर नहीं होते, इसमें आलस महसूस नहीं करते। जितना ज्यादा शास्त्र बताया गया, रूप गोस्वामी बता रहे हैं, जब मैं भगवान के पवित्र नामों का जप करने लगता हूं तो मुझे लगता है कि एक जीवा कम है, हजारों जीवाएं होनी चाहिए। और जब मैं भगवान के पवित्र नामों के बारे में सुनता हूं तो मुझे लगता है दो कान नहीं होने चाहिए, हजारों कान होने चाहिए। तो ये भगवान का नाम है और ये भगवान की सुंदरता है। तो इस सुंदरता से, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथ है, और श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तब भी भगवान के परपौत्र भगवान के सामने उपस्थित थे, है ना? इतना कुछ होने के बाद भी भगवान जो वहां पर थे उनकी आयु कितनी थी? वही 15 वर्ष 9 महीने और 7.5 दिन। भगवान उतने ही नवीन और नवयुवक लग रहे थे। और जो भगवद गीता है, ये तो हमने भगवान का नाम, भगवान का सौंदर्य, भगवान का धाम, भगवान का जो मुख से वाणी निकली है, भगवद गीता 5000 साल पहले जो गीता का उपदेश दिया गया, अब भी अगर हम उस गीता के उपदेश को पढ़ते हैं तो हमें कैसा लगता है? ये एवर न्यू लगता है, एवर फ्रेश लगता है। जितनी मर्जी बार हम भगवद गीता पढ़ लें पर फिर भी क्या लगता है? ये तो पहले कभी पढ़ा ही नहीं था, ये तो पहले कभी सुना ही नहीं था। कितनी चीजें हमें ऐसे लगती हैं कि जो उसमें न्यू है, अभी भी समझ आ रही है, और हमेशा ऐसा ही होगा अगर हम हजारों बार भी पढ़ लें। तो यही भगवान का, यही भगवान का दरअसल यश है, यही भगवान का ऑपुलेंस है, ये भगवान का। और इसी भगवान के ऑपुलेंस से बताया जाता है लक्ष्मी देवी जो चंचल है ना, फ्लिकरिंग, कभी किसी के पास टिकती नहीं है, वही लक्ष्मी देवी बन जाती है भगवान से और कभी कृष्ण को, विष्णु को छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि कृष्ण इतने एवर फ्रेश लगते हैं, इतने सुंदर हैं कृष्ण। और राधा रानी प्रार्थना कर रही हैं, प्रार्थना नहीं, राधा रानी गोपियों से डिस्कस कर रही हैं, बाकी गोपियों से, जब कृष्ण राधा रानी को छोड़कर चले जाते हैं गोपियों को, तो राधा रानी प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं और इतने फ्रेश लगते हैं कि कोई भी युवती अगर कृष्ण का दर्शन करती है तो चाहे वो जितनी मर्जी सती क्यों ना हो, कृष्ण के दर्शन करने मात्र से उसका सतीत्व वो टूट जाता है, उसकी जो चेस्टिटी है वो टूट जाती है। कृष्ण इतने सुंदर हैं, हर कोई कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो यही कृष्ण का सौंदर्य है और यही भगवान का सौंदर्य है। तो यही यहां पर श्लोक बताया गया है कि भगवान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भगवान बूढ़े हो गए या भगवान की वाणी जो है अब वो बोरिंग लग रही है या समझ नहीं आ रही या अब वो लग रहा है कि मुझे सब कुछ पता है। आप उन स्कॉलर से पूछिए, उन पंडितों से पूछिए जिन्होंने हजारों हजारों बार गीता पढ़ी है, जिनको गीता के सारे श्लोक याद हैं, कि आपको लगता है कि मेरे को गीता का सब कुछ पता है? वो आपको यही बताएंगे कि अभी तक समझ आनी शुरू नहीं हुई। तो यही गीता का महत्व है। इस प्रकार से साउथ इंडिया के वो भक्त, जिनकी कथा धनुर्धर, जो अपनी प्रेमिका से इतने आकर्षित थे कि वो जब भगवान का रथ उनके सामने से निकला तो भगवान के दर्शन करना वो भूल गए। उनको लगा कि भगवान के दर्शन, उनको समझ नहीं आया कि भगवान का रथ, भगवान का कीर्तन, भक्त सब पास में से निकल गए। पर जब रामानुजाचार्य ने जब कृपा की उन पर और उनको रंगनाथ जी के दर्शन करवाए, तो धनुर्धर ने क्या किया, अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उनको ये महसूस होगा कि भगवान से अधिक सुंदर और कुछ नहीं है। उसको लगता था धनुर्धर को कि मेरी प्रेमिका की आंखों से सुंदर कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है संसार में। पर जब उसने भगवान की आंखों के दर्शन किए तो भगवान की आंखों के दर्शन करके उसको लगा कि अरे इन आंखों से सुंदर और कुछ नहीं है, इस रूप से सुंदर और कुछ नहीं है। तो यहां पर जो बताया जा रहा है कि भगवान किस प्रकार से, भगवान अपने शाश्वत जगत में हमेशा रहते हैं पर इस भौतिक जगत में भगवान शासन करते हैं अपने विराट रूप के थ्रू, विराट रूप के द्वारा। क्योंकि भगवान के बहुत बहुत अवतार हैं, नरसिंह, वराह, वामन, कृष्ण, राम, भगवान के इतने रूपों में भगवान अवतरित होते हैं। परंतु इसमें से जो भगवान का विराट रूप का जो फॉर्म है, दरअसल इसे भौतिक गिना जाता है। ये एक मेटीरियल एक्सपेंशन है भगवान का, जिसका आध्यात्मिक जगत में कोई लोक नहीं है। आध्यात्मिक जगत में वराह लोक है, वामन देव का लोक है, नरसिंह भगवान का लोक है, कृष्ण लोक है, राम लोक है, पर विराट रूप का भगवान के, विराट पुरुष का कोई लोक नहीं है। क्योंकि ये जो भगवान का एक्सपेंशन है, इसे भौतिक गिना जाता है। परंतु ये भौतिक भी है, पर भौतिक होने के बाद भी ये हमारे भौतिक शरीर की तरह नहीं है। हमारा भौतिक शरीर कैसा होता है, इसमें से दुर्गंध आती है, पर भगवान का भौतिक शरीर ऐसा नहीं है, ये बहुत सुंदर है। भौतिक होने के बाद भी ये बहुत सुंदर है। दरअसल वेदों में भगवान की स्तुतियां, विराट रूप की स्तुतियां की गई हैं। तो दरअसल हजारों हजारों श्लोक में भगवान के विराट रूप की स्तुतियां की गई हैं। तो ये कुछ स्तुतियां यहां पर लिखी हैं, 15-20, इसमें से हम 5-6 आपको पढ़ के बताएंगे। यहां बता रहे, द सुप्रीम लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स हैज 1000 हेड्स, कि भगवान जो ब्रह्मांड के रूप में अवतार में आपको अवतरित करते हैं, उनके हजारों सर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पैर हैं। ही कंटेन्स ऑल लिविंग एंटिटीज, जितनी भी जीव आत्माएं हैं सब उनके अंदर रहती हैं। हैविंग परवेडेड द यूनिवर्स कंप्लीटली टू गिव इट्स एग्जिस्टेंस, बींग इंडिपेंडेंट ही एक्सटेंडेड हिमसेल्फ बियॉन्ड बाई इट्स 10 फिंगर्स। तो भगवान की क्या है, 10-10 उंगलियां हैं, और भगवान ने अपने आप को पूरे ब्रह्मांड में विस्तार किया हुआ है। फ्रॉम द लॉर्ड, भगवान से द विराट और यूनिवर्स वॉज बॉर्न, भगवान से क्या है, ये विराट रूप अवतार लेता है। एंड इन दैट विराट पुरुष, उस विराट पुरुष में परमात्मा जो है इस ब्रह्मांड के, परमात्मा ऑफ द यूनिवर्स वॉज बॉर्न। हैविंग अपियर्ड द विराट पुरुष ग्रू एंड प्रोड्यूस द अर्थ एंड बॉडीज ऑफ द जीवास। तो क्या है, इसी विराट पुरुष से पृथ्वी निकली, इसी विराट पुरुष से सारे लोक निकले, और इसी विराट पुरुष से ही सारे जीव निकल रहे हैं। बता रहे, फ्रॉम द फेस केम द ब्रह्मा, मुख से क्या निकले, विराट पुरुष के ब्राह्मण निकले, सॉरी, फ्रॉम द टू आर्म्स, बाजुओं से क्षत्रिय निकले, फ्रॉम द थाइस से क्या निकले, वैश्य, एंड फ्रॉम द फीट शूद्रा, भगवान के पैरों से शूद्र निकले। द मून वॉज बॉर्न फ्रॉम हिज माइंड, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा क्या है, भगवान का मन है। चक्षु सूर्य अजायता, चक्षु क्या है, भगवान के सूर्य है। मुखात इंद्राश अग्निश, और मुख क्या है, भगवान का इंद्र और अग्नि। प्राणात वायु अजायता, जितने हम वायु देख रहे हैं ये सब क्या है, प्राण है भगवान के। तो जो भी भगवान का विराट एक्सपेंशन है यही है। हम ये स्पेस देखते हैं, अंतरिक्ष बता रहे हैं, फ्रॉम हिज नेवल केम द अंतरिक्ष, भगवान की नाभि से ये अंतरिक्ष निकला। अंतरिक्ष स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक में जितना स्पेस है इसे अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये अंतरिक्ष भगवान की नाभि से निकला, ये भगवान की नाभि है। तो ये है भगवान के विराट पुरुष का रूप। परंतु फिर भी जो कृष्ण का सौंदर्य है, जो कृष्ण का रूप है, उसके सामने भगवान का कोई भी रूप, चाहे वो विराट रूप हो चाहे और भी कोई रूप हो, वो भक्तों को सुंदर नहीं लगता। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा युद्ध के मैदान पर, तो अर्जुन बहुत डर गए भगवान का विराट रूप देखने के लिए, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपको वैसा ही देखना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको पहले देखा था, जैसे आप मेरे मित्र के रूप में थे, मैं आपको वैसा ही देखना चाहता हूं, आप उसी रूप में वापस आ जाइए। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब तक हम लोग भगवान के फॉर्म से, ऐसे शरीर से आकर्षित नहीं हो जाते जो बिल्कुल चिन्मय हैं, तब तक हम कभी सुखी नहीं रह सकते। हर व्यक्ति के दुख का कारण केवल एक है, कि वो भगवान के सौंदर्य से आकर्षित नहीं है। हर कोई सौंदर्य किस में ढूंढ रहा है, एक दूसरे के शरीरों में ढूंढ रहा है, एक युवक समझता है कि जो युवती है उसके शरीर में बहुत सुंदरता है, एक युवती सोचती है कि युवक के शरीर में बहुत सुंदरता है, पर तो दरअसल सुंदरता कुछ नहीं है, है ना। बताते ना, मेटीरियल ब्यूटी इज स्किन डीप। अगर ये आप मास को हटा दें जो बहुत सुंदर लग रहा है, तो अंदर क्या है? क्या आपको खून अच्छा लगता है? क्या आपको हड्डियां अच्छी लगती हैं? क्या आपको मांस अच्छा लगता है? मल मूत्र ये सब चीजें अच्छी लगती हैं? तो ये शरीर किसका बना हुआ है? स्किन डीप। इस मांस के नीचे अगर चले जाइए थोड़ा सा, बस इतने सारे मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर मिस यूनिवर्स आए, जितने आए सब चले गए वहां पर। उनकी ब्यूटी कब तक टिकती है? थोड़े से समय तक बस। चाहे वो जितने मर्जी सर्जरी करवा लें, जितना मर्जी अपने आप को सुंदर बनाने का जितना मर्जी मेकअप कर लें, पर वो जो ब्यूटी है उनकी बहुत लिमिटेड रहती है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो स्त्री, वो युवती, हर आजकल युवक व्यक्ति की, पुरुष की इच्छा यही होती है कि जो मिस इंडिया है या मिस यूनिवर्स है, काश वो उसकी पत्नी होती, काश वो उसकी प्रेमिका होती, ये इच्छा होती है उसकी। आप इच्छा की लिमिट देखिए, एक बार आप उससे पूछ लीजिए जो मिस इंडिया या मिस्टर मिस यूनिवर्स का पति होगा, या जो मिस इंडिया मिस यूनिवर्स निकल गई है उसका जो पति था, उससे पूछ लीजिए कि क्या आप खुश हैं इस मिस इंडिया के साथ रह के। डाइवोर्सेस होते हैं, तलाक होते हैं उनके, आप पूछ लीजिए क्या आप खुश हैं इसके साथ रह के। वो बताएगा नहीं, खुश नहीं हूं, तलाक के केस चल रहे होते हैं उनके, है ना। आप उसके पति को छोड़ दीजिए, उस इस मिस इंडिया से ही पूछ लीजिए क्या आप खुश हैं, वो भी खुश नहीं है। तो जब वो खुद खुश नहीं है, उससे जो जुड़े हुए लोग खुश नहीं है, तो हमारी इच्छा है कि हम उसके साथ रह के खुश हो जाएंगे, क्या वो सही है? क्या बिल्कुल गलत है? तो ये जो भी सुंदरता है ये बहुत थोड़े समय के लिए है, और ये सुंदरता हमेशा आती है और चले जाती है ना? आजकल मूवीज में बहुत लोग बहुत गाने बनाते हैं, कुछ कुछ होता है, शादी से पहले बहुत लोग गाना गाते घूम रहे होते हैं, शादी के बाद वो कुछ कुछ होता था हो जाता है, कि वो जो होता है वो बंद हो जाता है अपना। वो व्यक्ति जो चांद तारे तोड़ के लाने के लिए तैयार होता है अपनी प्रेमिका के लिए, अगर प्रेमिका बोलते है कि जाओ आलू खरीद लाओ बाहर से, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वो, है ना, क्योंकि वो जो प्रेम है वो ढल चुका होता है। अब उस प्रेम में कोई रस नहीं बचा होता, क्योंकि दरअसल उस व्यक्ति ने प्रेम किससे किया था? इस शरीर से, इस शरीर की सुंदरता से, है ना, नाक अच्छा है, आंखें अच्छी हैं, कान अच्छे हैं, इससे इससे उसने प्रेम किया था। ये कब तक अच्छा रहेगा? थोड़े समय बाद आंखें कमजोर होंगी, चश्मा लग जाएगा, दांत टूटने शुरू होंगे, नकली दांत लगाएगा व्यक्ति। किस चीज से आकर्षित हो रहा है इस ब्यूटी में, सुंदरता में? क्या है सुंदरता इसका? कुछ सुंदरता नहीं है। असली सुंदरता है वो भगवान की है, और कृष्ण की सुंदरता। देखिए, अगर कोई भी चीज चेंज हो रही है, इसका मतलब टेम्परेरी है, शाश्वत है, उसका नाश हो रहा है धीरे धीरे करके। किसी भी चीज का अगर आप नाश हो रहा है, उसके साथ जुड़कर आप खुश कैसे हो सकते हैं? अगर आपको खुश रहना है तो आपको ऐसी चीज के संपर्क में आना पड़ेगा जिसका कभी नाश नहीं होता। तो कृष्ण और कृष्ण के साथ जुड़ी हुई वस्तुएं, कृष्ण का नाम, कृष्ण का धाम, कृष्ण की वाणी, ये हमेशा फ्रेश रहती है, हमेशा सुंदर रहती है। कृष्ण की ब्यूटी, नॉलेज, कृष्ण की मर्सी ना, कृष्ण की करुणा, ये हमेशा फ्रेश रहती है भक्तों के प्रति। नरसिंह देव बता रहे हैं, जब प्रहलाद महाराज की कथा इसी स्कंद में अभी आगे आएगी, तो नरसिंह देव उसमें बताएंगे, जब पूरी प्रहलाद महाराज जब गुणगान कर लेंगे नरसिंह देव का, फिर नरसिंह देव आखिरी में बताएंगे कि मुझे प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। क्योंकि हमारा जीवन सार्थक तभी होगा जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान को खुश करेंगे। तो नरसिंह देव बता रहे हैं कि अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये प्रसन्न करने का एकमात्र केवल तरीका है कि मेरे नाम का गुणगान कीजिए। और इससे बड़ा तरीका ये है कि अगर मेरे भक्तों का कोई गुणगान करेगा। नरसिंह देव बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रहलाद महाराज के इस चरित्र को पढ़ता है या पढ़ेगा या सुनता है, तो सुनने मात्र से क्या होगा, उसका जितने भी भौतिक कलमश है, जितने भी पाप हैं उसके, जिन पापों के कारण इस भौतिक शरीर में वो बंधा हुआ है, वो सब पाप खत्म हो जाएंगे उसके, और इस भौतिक शरीर से उसका वो मुक्त हो जाएगा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो इस भौतिक शरीर से मुक्त हो जाए, पर मुक्त होने का केवल एकमात्र तरीका है, वो है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करें। इसलिए राधाना स्वामी महाराज बता रहे थे अपने एक लेक्चर में, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ओनली टेक प्लेस व्हेन द लॉर्ड इन अवर हर्ट प्लीज बाय अवर एफर्ट ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, कि आध्यात्मिक उन्नति तभी संभव है जब भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे हमारे प्रयासों से जो हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो दरअसल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो हमारे एफर्ट्स हैं। हमने कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं ये मैटर नहीं करती। हो सकता है कोई व्यक्ति प्रवचन देने में बहुत एक्सपर्ट हो, हम देखते हैं बाहर इतने बड़े बड़े प्रवक्ता हैं तो इतना अच्छा प्रवचन देते हैं, परंतु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करते तो जीरो है, बिल्कुल उसका कोई लाभ नहीं है। इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं बाहर, इतने अच्छे अच्छे गायक हैं, पर कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है उसमें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो केवल श्रम है, श्रम एव ही केवलम, और ये सारे जो कर्म हैं ये बंधन में डालने वाले हैं, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये सारे कार्य करके हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ नहीं रहा, कृष्ण के प्रति आकर्षण कम हो रहा है। क्योंकि अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और कृष्ण की सेवा करने के पीछे हमारा कोई भौतिक लाभ है, लालच है कि कृष्ण की सेवा करने के पीछे हम धन कमाना चाहते हैं, यश कमाना चाहते हैं, अगर ये सब लालच है हमारे पीछे तो वो भक्ति का क्या लाभ मिलेगा। कि मान लीजिए अगर हम कीर्तन कर रहे हैं बहुत अच्छा और हम चाहते हैं कि लोग बहुत आकर्षित हों इससे, कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा, सभी लोग आपसे आकर्षित हो जाएंगे केवल कृष्ण के अलावा। अगर हम चाहते हैं प्रवचन देने में कि हम बहुत ऐसा प्रवचन दे के दिखाएं कि मेरी जब मैं कथा करूं तो हजारों हजारों लोग आए, दूर दूर से आए वहां पर, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि कथा है ना, भगवान का नाम है, आप भौतिक लाभ से लेंगे लालच से तो वो भी आपका पूरा होगा। हजारों हजारों लोग आएंगे कथाओं में, हम देखते हैं कथाएं होती हैं बाहर, हजारों हजारों लोग आते हैं पर उस व्यक्ति के जीवन में चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आता। उस व्यक्ति के हृदय का जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है वो वैसे का वैसे बना रहता है जैसा शुरू में था, बल्कि क्या होता है और बढ़ता रहता है, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, है ना। अथ पुंबिर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वानुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। जब तक हमारे जीवन के सारे कार्य हरि की प्रसन्नता के लिए नहीं किए जाएंगे, जब तक हर चीज का गोल कृष्ण की प्रसन्नता नहीं रहेगा, तब तक क्या होगा, बंधन, केवल हमें बंधन मिलेगा उससे और कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं, जितने भी भक्त हैं, हर किसी ने यही करके दिखाया, हर किसी ने अपना आकर्षण भगवान से डेवलप किया, भगवान की सुंदरता के प्रति, सुंदरता से आकर्षित होकर। और सबसे अच्छा माध्यम भगवान के प्रति आकर्षित होने का क्या है, डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप का मतलब हम मंदिर में आए और भगवान के अर्चन विग्रह का दर्शन करें, भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करें, भगवान के सामने नाचें, हम लोग भगवान के दर्शन करें घंटों घंटों। जब हम भगवान के दर्शन करेंगे बार बार लगातार दर्शन करेंगे तो ये जो हमारा भौतिक आकर्षण है शरीरों के प्रति ये खत्म हो जाएगा। शास्त्र ने बताया कि जब भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की आंखों के, भगवान के मोहों के दर्शन करते हैं, तो हमारा जो भौतिक सुंदरता से आकर्षण है ये सब खत्म हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान के प्रति हम आकर्षित हों, क्योंकि देखिए कोई भी चाहे योगा क्यों ना हो, किसी भी योग के माध्यम से, किसी भी चीज के माध्यम से, हर चीज का लक्ष्य केवल यही रहता है भगवान की प्रसन्नता, भगवान को प्रसन्न करना, कृष्ण को आकर्षित करना आपके अपने प्रति। और भक्ति का केवल एकमात्र यही तरीका है कि हम ऐसे कार्य करें, ऐसी सेवाओं में जुड़े, इस प्रकार से सेवा करें कि भगवान को हम अपनी ओर आकर्षित कर सके। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बताते थे कि कुछ लोग कोशिश करते हैं भगवान के दर्शन करने की, पर जो भक्त हैं भगवान के वो भगवान के दर्शन करने की कोशिश नहीं करते, वो ऐसे कार्य करते हैं कि भगवान देखते हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो ऐसी सेवा कर रहा है और भगवान उस पर स्वयं कृपा करते हैं। अभी हम हॉस्पिटल में गए थे किसी काम से तो एक व्यक्ति मिला, तो वो व्यक्ति कहता है कि प्रभु जी आपने भगवान के कभी दर्शन किए हैं। मैंने कहा हाँ किए हैं, रोज करता हूं। तो सोचने लगा, कह रहे कैसे किया है। मैंने कहा आप भी आइए मंदिर में, आप भी कर सकते हैं, हर किसी को होते हैं हमारे मंदिर में भगवान के दर्शन, राधा कृष्ण है, कृष्ण बलराम है, हमेशा दर्शन करते हैं, आपको कभी भी दर्शन मिल सकते हैं। वो कह रहे नहीं नहीं मैं इनकी बात नहीं कर रहा, क्या आपने साक्षात रूप से भगवान के कभी दर्शन किए हैं? तो व्यक्ति के अंदर वो भ्रम इतना ज्यादा भरा पड़ा है कि वो अर्चे विग्रह को भगवान मानता ही नहीं है। ये जो फॉर्म है राधा कृष्ण का, कृष्ण बलराम का, ये स्वयं भगवान है हमारे सामने उपस्थित है, जो अपनी सुंदरता से हमें आकर्षित करना चाहते हैं। जितने भी भक्त हैं, जो भी व्यक्ति मंदिर से जुड़ते हैं, वो किस चीज से जुड़ते हैं? क्या किसी प्रवचन से जुड़ते हैं? क्या किसी व्यक्ति की शक्ल देख के जुड़ते हैं? नहीं, वो जुड़ते हैं हरि कथा से, हरि नाम से, भगवान की सुंदरता से, शुद्ध भक्तों के शुद्ध संग से, इन चीजों से वो भक्ति से जुड़ते हैं। तो हमें ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े, तो ये आकर्षण अपने आप नहीं बढ़ेगा, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या है? भगवान के सामने आए और भगवान के दर्शन करें। जब हम भगवान के दर्शन करेंगे तो बहुत सारे जरूरी काम याद आएंगे हमारे को। अरे यहां खड़ा क्या कर रहा है, जा ऊपर जाके कुछ और कर ले, जा बाहर चले जा, इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं वो काम क्यों नहीं करता, सारे थॉट्स विचार सब दिमाग में आने शुरू होंगे उस समय। क्यों? क्योंकि माया की यही सबसे बड़ी चाल है कि आपको सर्व आकर्षक कृष्ण से आकर्षित नहीं होने देगी। जिस प्रकार एक बार हम सुन रहे थे कि जब जो कली है, जब परीक्षित महाराज ने उसको बोला कि ठीक है चार चीजों में तुम्हारा वास होगा, ठीक है ना, उसमें से मतलब ये जो चार चीजें बताई, पांच चीजें बताई गई थी, कोई अवैध संबंध नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई मांसाहार नहीं और सोने में, इन सब चीजों में तुम्हारा वास होगा। और उन परीक्षित महाराज ने बताया कि चलो इतने दोष है इसके अंदर, पर एक तो अच्छा गुण है कि इसमें हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। तो कली यही सोच के मुस्कुरा रहा था कि इस कलयुग का सबसे आसान तरीका है आगे बढ़ने का इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप, परंतु मैं किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने दूंगा तब करेंगे ना। जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगेंगे, जैसे ही भक्ति में आगे बढ़ने का कोई साधन ढूंढेंगे, चाहे भगवान के दर्शन हो, कथा हो, कुछ भी करो हो, उस समय मैं निद्रा के रूप में आके इनको ढक लूंगा। इसलिए हम कुछ भी करने लगते हैं। एक भक्त मेरे पास आए थे, कह रहे प्रभु जी रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा प्रभु जी चैंटिंग करना क्यों नहीं ट्राई करते रात को आप? भाई नींद नहीं आती ना आपको, उनको नींद नहीं आती है रात को, आप रात को चैंटिंग करना ट्राई कीजिए, अपने आप नींद आ जाएगी वहां पर। तो उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की, उनको नींद आ जाती थी। क्योंकि ये जब भी हम जप करने की कोशिश करते हैं, कोई भी ऐसे प्रोसेस अपनाते हैं जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े, ये माया निद्रा के रूप में आके हमें ढक लेती है। तो इसके लिए क्या है, हमें बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अटेंटिव। क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ना किसी भी भौतिक चीज पर निर्भर नहीं करता, भक्ति में आगे बढ़ना केवल निर्भर करता है हमारी सिंसियरिटी पे, हमारे सिंसियर एफर्ट्स पे। अगर हम सिंसियर एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर हमारी इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने की, तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे। अगर आप हिमालय में चले जाएं, अभी भी आपको कई कई योगी मिलेंगे जो इतनी सर्दियों में बर्फ में बैठ के तपस्या करते हैं, और बर्फ इतनी सर्दियों में बर्फ में पहाड़ों में, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, वहां पर बैठ के तपस्या करते हैं वो। अभी भी कुछ ज्ञानी हैं जो 18-18 घंटे वेदों का पाठ करते हैं, जो अभी भी बिल्कुल सेलिब्रेट हैं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई अवैध स्त्री संबंध नहीं, कभी देखते भी नहीं यहाँ पर, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। परंतु इन सब चीजों के बाद भी ये लोग कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। परंतु हम मंदिर में आने वाला नया भक्त, इसको आए हुए अभी कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल क्यों नहीं हुए, वह जब मंदिर में आता है और भगवान की कथा सुनना शुरू करता है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उससे। मंदिर में नहीं भी आता, मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है घर में बैठी है अगर, और घर में बैठे बैठे अगर भगवान की कथा सुन रही है या भगवान के भक्तों की कथा सुन रही है, तो ये सुनने मात्र से कृष्ण इतना प्रसन्न होते हैं कि कृष्ण ये जानते हैं कि अरे ये भक्त तो मुझ में मेरे प्रति सीरियस हो रहा है, सिंसियर हो रहा है। और कृष्ण क्या करते हैं, अपनी कृपा देते हैं वहां पर। तो भक्तों को कभी भी भगवान के प्रति इस श्रवण को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान के दर्शन करने मात्र का, भगवान की सुंदरता से आकर्षित होने का एकमात्र तरीका है, वो है हमारे कान। हम इन आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं इन कानों से। इसलिए वेदों में बताया गया है प्रविष्टा कर्ण रंध्रिण्या, कि भगवान प्रविष्ट होते हैं हमारे हृदय में कानों के माध्यम से, और जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, देखिए आप सब जो यहां पर आए हैं सबका लक्ष्य यही रहता है कि हम भगवान के प्रति हमारा आकर्षण और बढ़े। सुनते हैं हम, श्रवण करते हैं, इसलिए करते हैं भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े। यह आकर्षण तब तक बढ़ेगा जब तक हमारा भगवान की कथा के प्रति आकर्षण रहेगा। और भगवान की कथा से भी ज्यादा सुप्रीम क्या है, भगवान के भक्तों की कथा। जब उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भगवान हमारे से प्रसन्न होंगे। तो भक्तों क्या करना चाहिए, भक्तों को हमेशा अपना जो केंद्र है इस कथा को बनाना चाहिए। उन्हें चाहिए कि कथा सुने, भगवान के बारे में सुने। कथा का मतलब केवल ये नहीं है कि भगवान की लीलाओं के बारे में सुनता रहे सिर्फ। कथा का प्रैक्टिकल मतलब ये है कि उस कथा से वो शिक्षाएं क्या ले। हमारे जितने भी आचार्यों ने, अभी भी अगर आप देखेंगे कि हमारे कुछ भक्त हैं, कुछ महाराज हैं, जैसे राधा गोविंद स्वामी महाराज, अगर आप उनकी कथा को सुनेंगे तो उनकी कथा केवल कथा नहीं होती, उनकी कथा पूरी शिक्षाओं से भरी होती है। क्योंकि ये कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई जाती। अगर आप महाराज की कथा सुनेंगे तो वो केवल मनोरंजन के लिए आपको नहीं सुनाएंगे, वो कथा सुनाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन आए। कथा सुनाने के साथ साथ वो बताते हैं कि देखो ये आपका स्तर है, ये शुद्ध भक्ति का स्तर है और ये शुद्ध भक्ति में पहुंचने का माध्यम है। इस तरीके से आप अपने स्तर से उठकर इस शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ सकते हैं। तो हर कथा का यही मतलब होता है कि हम उससे कुछ टीचिंग्स लें, कुछ उस लेसन्स लें उससे। तो यहां पर नरसिंह भगवान इस संदर्भ में और आगे बताएंगे कि किस प्रकार से, जैसे जब जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को, प्रहलाद महाराज की इस कथा को सुनता है, उसका जो भी भौतिक कलमश है, उसके अंदर जो भी भौतिक अनर्थ है, वो सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप भक्तों को चाहिए सबको कि ये जो प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स हैं इसको पूरा सुने रेगुलर बेसिस पे। जो लोग रेगुलर मंदिर नहीं आ सकते, इंटरनेट से या किसी ना किसी माध्यम से इसे सुने हम लोग। क्योंकि नरसिंह भगवान ने, देखिए हम कृष्ण के लिए सोच सकते हैं कि ठीक है, कृष्ण का जॉली ऐसा जोकिंग नेचर है कि कृष्ण मजाक में कुछ बोल सकते हैं तो हम सोच रहे मजाक कर लेंगे, मजाक कर रहे हैं कृष्ण। परंतु नरसिंह देव का जो अवतार है ये कोई मजाक करने के लिए नहीं आया। नरसिंह देव का जो रूप है ये कोई जोकिंग मूड नहीं है उनका, कोई उनके अंदर नरसिंह देव कुछ बोल रहे हैं तो बिल्कुल सीरियस बता रहे हैं कि अगर जो भक्त, जो भी व्यक्ति प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को, प्रहलाद महाराज के उपदेशों को सुनेगा, उसका जितना भौतिक कलमश है सब खत्म हो जाएगा। तो हमें इस बात में निष्ठा रखते हुए, हमें आगे बढ़ते हुए इन कथाओं को सुनना चाहिए, इनसे लेसन लेना चाहिए, समझना चाहिए इसे। और इस श्लोक में भी यहां पर हिरण्यकश्यप जो ब्रह्मा जी की स्तुतियां करते हुए यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से, जो ब्रह्मा को वो बता रहे हैं कि भगवान जो है यहां पर, कि किस प्रकार से भगवान है वो हमेशा चेंजलेस है, भगवान में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। भगवान चाहे अपने शाश्वत रूप में, अपने शाश्वत धाम में क्यों नहीं है, चाहे फिर इस भौतिक जगत में आकर भगवान को लीलाएं क्यों नहीं करते, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता। चाहे भगवान बालक के रूप में क्यों नहीं है, चाहे भगवान नवयुवक क्यों नहीं है, भगवान में कोई चेंज नहीं आता। जो षड ऐश्वर्य है भगवान की, ऑल रिच, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेमस, ऑल नॉलेज, ऑल ब्यूटी, ऑल रेनाउंसिएशन, ये छह ऐश्वर्य हमेशा भगवान में पूर्ण मात्रा में रहते हैं, कभी इसमें कोई कमी नहीं आती, और यही भगवान है। तो हमें यहां से यही सीखना चाहिए और यही लेसन लेना चाहिए कि किस प्रकार से हम हरि कथा के प्रति, हरि नाम के प्रति, भगवान के दर्शन के प्रति अपनी रुचि को, अपनी निष्ठा को बढ़ाएं आगे, और इस प्रकार से आगे बढ़ाएं कि रेगुलर बेसिस पे हमारे अंदर लोभ आए। जब हम कुछ सुन के जाएं, है ना, जब टीवी सीरियल देखने की आदत होती है सबको, तो जो सीरियल हफ्ते में एक बार आता है केवल, वो जब सीरियल खत्म होता है तो सस्पेंस पे खत्म होता है, टू बी कंटिन्यूड। तो पूरे हफ्ते वो व्यक्ति यही सोचता रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, है ना। नहीं भी उसको पता होता आगे क्या होगा, फिर भी अपने पड़ोसियों से, उन स्त्रियों से जो सेम नाटक देख रही हैं, उनसे चर्चा करते हैं हम लोग कि आगे देखो ये होने वाला है, शायद ये होगा, है ना। वो लालच बना रहता है कि देखो आगे क्या होने वाला है। तो हम भी जब कृष्ण कथा सुने, क्योंकि देखिए हमारा भी जो भागवतम श्लोक होता है रोज का, एक सस्पेंस पे खत्म होता है। अब आगे क्या होगा ये अगली क्लास में देखना पड़ेगा, टू बी कंटिन्यूड होगा, क्योंकि पूरी कथा एक क्लास में कभी भी नहीं ली जाती, तो वो टू बी कंटिन्यूड है। तो हमारे अंदर ही लोभ आना चाहिए, लालच आना चाहिए कि अब आगे क्या होगा, या अगर हम दो तीन दिन बाद आ रहे हैं तो ये होना चाहिए कि क्या मैंने मिस कर दिया बीच में। अगर हम सुन नहीं पाए तो भागवतम खोलकर पढ़ें इसमें से कि क्या था उसके बीच में। तो इसे कहते हैं लोभ, लालच। तो हिरण्यकश्यप का जो लालच था धन प्राप्ति के लिए, जो हमेशा हर चीज का मालिक बनने के लिए, अगर उसी लालच को, क्योंकि वही लालच हर जीव में रहता है, अगर उस लालच को हम कृष्ण कथा के प्रति लौल्यम बना लेंगे, कृष्ण कथा के प्रति मोड़ लेंगे, तो हमारा जितना भी भौतिक लालच है सब खत्म हो जाएगा। तो यही इस श्लोक से हम यहाँ पर शिक्षा ले सकते हैं कि हम अपने कृष्ण कथा के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाएं और ये ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि कितने सारे भ्रांत झूठे लोग हैं और कितनी सारी झूठी संस्थाएं हैं जो गलत प्रचार कर रही हैं कि कृष्ण वृद्ध होते हैं, कृष्ण मर चुके हैं, या भगवान जैसा कुछ बचा नहीं है अभी, या भगवान बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनके अंदर सोच समझ के अब शक्ति बची नहीं है, इसलिए देखो कितनी गलतियां हो रही हैं आजकल समाज में, कितनी सुनामी, कितनी प्रलय, कितना कुछ आ रहा है, क्योंकि भगवान अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सुप्रीम कंट्रोलर अब कंट्रोल करने के लायक नहीं बचे, क्योंकि बूढ़े हो गए हैं, अब वृद्ध हो गए हैं। तो कितनी भ्रांत धारणाएं हैं, तो हमें ये ध्यान दें हम लोग कि जो भ्रांत धारणाएं बाहर चल रही हैं, इन धारणाओं से हम लोग बचें और अपनी जो असली रुचि है उसको कृष्ण के प्रति मोल्ड करें, कृष्ण के प्रति उसको बढ़ाएं आगे। तो यहीं पर ही हम विराम देंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, नेताय गौर प्रेमानंदे।